நமோ அரிஹந்தானம், நமோ சித்தானம், நமோ ஆயிரியானம், நமோ வஜ்யாயானம், நமோ லோயே சவ்வ சாஹு ஏசு பஞ்சணமோ யாரு சவ்வ பாவப்பநாசனம் மங்களானம் சவ்வே சிம்பரமம் மங்களம் சத்தாரி மங்களம், அரிஹந்தா மங்களம், சித்தா மங்களம், சாஹு மங்களம், கேவலி பணத்தோதமோ மங்களம், சத்தாரி லோகுத்தமா, அரிஹந்தா லோகுத்தமா, சித்தா லோகுத்தமா, சாஹு லோகுத்தமா, கேவலி பணத்தோதமோ லோகுத்தமோ, சத்தாரி சரணம் பவஜாமி, அரஹந்தே சரணம் பவஜாமி, சித்தே சரணம் பவஜாமி, சாஹு சரணம் பவஜாமி, கேவலி பணத்தம் தம்பம் சரணம் பவஜாமி, மோக்ஷமார்கஸ்ய நேதாரம் வேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குண லப்தயே, வந்தே தத்குண லப்தயே. சத்வார் சூத்ர மகாசாஸ்திர ஹே ஓ சட்மா அத்யாய. இஸ் சட்மே அத்யாய மே ஆட் கர்மோ கி பஹுத் சுந்தர் சர்ச்சா கி கயி ஹே. கல் ஹம்னே கர்ம பந்தன் ஓர் உஸ்கி பந்தன் பிரக்ரியா கே சந்தர்ப மே தோடி பஹுத் யஹான் சர்ச்சா கி தி. ஆப் லோகோ கோ ஸ்மரண மே ஹோகா, கர்ம தீன் பிரகார கே ஹே, ஏக் த்ரவ்ய கர்ம, ஏக் பாவ கர்ம ஓர் ஏக் நவ கர்ம. த்ரவ்ய கர்ம ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि है, भाव कर्म राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम है, और नौ कर्म द्रव्य कर्म के उदय से मिले हुए संयोग हैं। इन तीनों का आपस में एक दूसरे से जुड़ान है, ये सब इंडिविजुअल नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द्रव्य कर्म का फल मिलता है, नौ कर्म का फल नहीं मिलता। नौ कर्म ऐसा कर्म नहीं है जिसका हमें फल मिलता हो, भाव कर्म ऐसा नहीं है जो हमें भविष्य में फल देता हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्म एकमात्र ऐसा है जो बंधेगा अभी और फल देगा बाद में। काम किया हमने अभी और रिजल्ट मिलेगा उसका बाद में। एक महीने काम किया और तनख्वाह मिली महीना पूरा हो जाने के बाद, कुछ काल के बाद, तो कभी तो ऐसा होता है कि बहुत समय तक हम काम करते रहे, कर्म करते रहे और उन सब का मिलकर के एक बार में फल मिले, और कभी ऐसा होता है कि एक बार में कर्म बंधा था और वो बहुत लंबे टाइम तक फल देता रहे। दो कंडीशन बतला रहा हूं मैं यहां। बहुत समयों के बांधे हुए कर्म, बहुत लंबे समय से बांधे हुए कर्म एक बार में फल दे देते हैं, एक साथ फल देते हैं, और कभी कभी एक बार बांधे हुए कर्म बहुत लंबे टाइम तक फल देते हैं। दोनों तरह की कंडीशन बन जाती है। द्रव्य कर्म का फल इस जीव को भोगना होता है। ये बंधते क्यों हैं द्रव्य कर्म? भाव कर्म के निमित्त से, राग द्वेष आदि के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंधन, और द्रव्य कर्म बंधने पर उसका जब फल मिलता है, उदय आता है, तो उसे कहते हैं नौ कर्म। उन संयोगों को कहते हैं नौ कर्म। नौ कर्म वास्तव में किसी कर्म का नाम नहीं है, नौ कर्म कोई कर्म नहीं है। नौ कर्म माने पदार्थ, नौ कर्म माने महल, मकान, घर, वार, परिवार, वो सब नौ कर्म है। वो सब हमारे को कर्म के उदय से मिले। हम क्या समझते थे कि हमने कमाया है, हम समझते थे हमने जोड़ा है, हम समझ रहे थे कि हमने इकट्ठा किया है, लेकिन भाई साहब ये आपके कारण नहीं है, ये कर्म के कारण है। कर्म की इस जीव के साथ में उदय आते समय कुछ डीलिंग होती है, आपस में कॉन्टेक्ट साइन होता है जीव का और कर्म के उदय का। कर्म जब उदय में आता है तो समझ लीजिए किसी कर्म के उदय से हमारे को लैपटॉप मिला, किसी कर्म के उदय से मोबाइल हमारे हाथ में आया। अब वो मोबाइल कब तक रहेगा? हम तो सोच रहे हमारा है, हम मालिक हैं उसके, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, लेकिन वो कर्म ये कहता है, द्रव्य कर्म ये कहता है कि देख ये मेरे कारण से तेरे को प्राप्त हो रहा है, ये मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, तुझे दे रहा हूँ ये मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, और तू इसे यूज में ले सकता है, इसमें कोई तेरे को रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इतना है कि जब मैं चाहूंगा तब बिना प्री इंफॉर्मेशन ये वापस छीन सकता हूँ, कोई इंटीमेशन नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई सूचना नहीं होगी, जब चाहे वो कर्म का उदय वापस छीन सकता है। दांत कितने हैं, कब तक रहेंगे, कौन से कर्म के उदय से स्वतंत्र है वो कर्म का उदय, कितने समय तक रहना और कितने समय बाद में वो दांत निकल जाना, कितने समय बाद में नए आना, कितने समय तक पीड़ा भोगना, ये सब कर्म के उदय पर निर्भर करता है। और ये कर्म कोई और हमारे को नहीं देता, ये हमारे ही द्वारा बांधे हुए कर्म है, हम ही बांधते हैं और हम ही भुगतना पड़ेगा। देखो कितनी स्वाधीनता है दुनिया में, ऐसी स्वाधीनता किसी धर्म दर्शन में नहीं है। आप ही करेंगे, आप ही कर्म बांधने वाले, आप ही कर्मों के फल को भोगने वाले, कितनी स्वाधीनता है। करे आप, फल दे कोई दूसरा, ऐसी अनिति जैन दर्शन में संभव नहीं है। जैन संप्रदाय में तो ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ जैन हैं और जैन संस्कारों की बात करते हैं, इसलिए हमारे कुछ सोच समझ करके जो कुछ कर रहे हैं उसकी कार्बन कॉपी तैयार हो रही है। मैंने कल कहा था, आपको याद रहे या नहीं रहे, आप ये कह सकते हैं मैंने क्या किया था। कभी कभी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं मैंने तो कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, पता नहीं कौन से कर्मों का फल भोग रहे, ऐसे क्या पाप किए। कई ऐसे मिल जाएंगे लोग कहेंगे तो हमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का कुछ अहित नहीं किया, किसी का बुरा चाहा ही नहीं हमने, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ऐसा फल क्यों मिल रहा है। भैया आज तुमने नहीं किया हो लेकिन कुछ साल पहले तुमने ही किया था, तुम करके भूल गए लेकिन वो जो कॉपी है ना अंदर जो कारमाण है, वर्गणाएं, कारमाण वर्गणाएं क्या चीज है, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, पुद्गल के परमाणु हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं वातावरण में। कर्म इतना करंट काम है कर्मों का, दुनिया में तो आपने चोरी की और पुलिस पकड़ेगी तो पकड़ेगी, हमने अपराध किया पता नहीं पकड़ने आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और लोक में तो ऐसी कहावत है चोर कौन कि जो पकड़ने आ जाए, जो पकड़ने नहीं आया वो साहूकार है, वो चोर तो नहीं है। तो हम लोग अपराधी कब, कि जब हमारे को सजा मिले तब। कर्मों में यहाँ उधार का काम नहीं है, कर्म बिल्कुल करंट है। ऐसा नहीं होता कर्म में कि आज हमने कर्म कर लिया और पता नहीं उसका फल कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि कर्मों में रिश्वत नहीं चलती, कर्म किसी के सगे नहीं होते, कर्मों में किसी की अप्रोच नहीं चलती। हमने किसी का नाम लेकर के कुछ काम करा लिया, हमने कुछ रिश्वत देकर के काम करा लिया, कर्मों में कुछ नहीं चलता है। आपके सारे कंप्यूटर फेल हैं उस कर्म कॉपी के आगे, इतना करंट हिसाब है। उन कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है, कर्मों में संक्रमण होता है, कर्मों में चेंज होता है, ऑटोमेटिकली उसमें डिवाइडेशन होता है। जितने कर्म हमने बांधे हैं हमारे विचारों, भावों और परिणामों से, जितने कर्म बंधे हैं वो सब के सब कर्म ऑटोमेटिक कुछ ज्ञानावरणी में चला गया पार्ट, कुछ दर्शनावरणी में चला गया, कुछ मोहनीय में, कुछ अंतराय में, कुछ वेदनीय में, कुछ नाम में और कुछ गोत्र कर्म में। इन सबका अलग अलग स्वरूप है, सबके अलग अलग फंक्शन है। ज्ञानावरणी अपना काम करता है, दर्शनावरणी अपना काम करता है, मोहनी कर्म का अपना एक अलग फंक्शन है, नाम कर्म के पास में अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, सबके डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कौन क्या काम करेगा, नाम कर्म सारी शरीर संबंधी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब नाम कर्म देखता है। अभी क्या बात देखी हमने, हमारे भाव उनसे बंधते हैं कर्म, जैसे भाव वैसे कर्म, और जैसा कर्म वैसा उदय, जैसा बांधेंगे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है ये बात कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, جتنا پیسہ خرچ کریں گے اتنی اچھی کوالٹی کی چیز ہم پراپت کر پائیں گے. اس میں تو کسی کو شنکا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہم جتنا خرچ کریں گے اتنا ملے گا. اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو کون سی کوالٹی کا مکان ملے گا, آپ کو کیسی کوالٹی کے کپڑے ملیں گے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ دیں گے کہ نہیں بھائی صاحب ایسا نہیں ہے, پیسہ تو بہت دے سکتے ہیں لیکن آپ کو ویسا ملے گا جیسا اندر میں کرم خرچ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس میں, لیکن جب خرچ کرنے جاتے ہیں اور خریدنے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا تھرڈ کلاس چیز خرید کر کے لے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا. خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتے, پیسہ دینے میں کوئی کمی نہیں رکھتے, لیکن کوالٹی اچھی نہیں آتی ہے, پتہ نہیں قسمت کیسی. اب وہ قسمت کا ہو آپ وہ کرم کا ادے ہے, جیسے آپ قسمت کہہ رہے ہیں ہمارے کنٹرول کے باہر ہے وہ. آپ کتنا پیسہ خرچ کریں کہ کسی کو بچا سکیں, اپنے پتا جی کو بچا سکیں, ان کا علاج کرا سکیں, ان کا اپچار کرا سکیں. ہم چاہیں جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, ہم پیسے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بھائی صاحب ادے کہاں سے لاؤں گے؟ پیسے سے تو نپٹ لیا جائے گا, ادے کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنا اپنا ہے نا, وہ کون کس کو دے سکتا ہے؟ ہم نے بہت کوشش کی. ہم کہتے ہیں دیکھیے کرشن اور بلدیو دونوں نے بہت پریاس کیا اپنے ماتا پتا کو بچانے کا. دوارکا نگری میں آگ لگ گئی تھی, پتا ہے آپ کو, نینی ناتھ بھگوان کے سمو شرن میں ایسی گھوشنا ہو گئی تھی کہ 12 ورش پشچات دوارکا نگری میں آگ لگ جائے گی اور پوری کی پوری دوارکا نگری جل کر بھسم ہو جائے گی. کہ کون بچے گا؟ کہ کوئی نہیں بچے گا, صرف دو ویکتی بچیں گے, کرشن اور بلدیو. کیسے بجائے گا پربھو, شب شب بولو, آپ کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں کو شنکا ہوئی اس پرکار کی, لوگوں نے کہا کہ بھگوان کیا بات کر رہے ہو آپ, ایسا کیوں بول رہے ہو آپ, کیا بگاڑا ہے لوگوں نے آپ کا؟ کہ نہیں کسی نے کچھ نہیں بگاڑا ہے, لیکن ایسا ہی سوروپ ہے. کون نمت بنے گا؟ دیپائن منی راج کا کرودھ اور شراب. شری کرشن نے اسی سمے دوارکا نگری میں شراب بندی کر دی, اور وہ شراب بندی گجرات میں آج بھی چل رہی ہے. دوارکا گجرات نہیں تھی, شراب بند کر دی گئی وہاں. 12 ساری جتنی شراب تھی وہاں سب کو پھکوا دیا گیا, جنگل میں پھکوا دیا گیا نگر کے باہر. دیپائن منیراج جن کے نام کی گھوشنا ہوئی تھی وہ 12 ورش کے لیے چلے گئے کہیں اور. جب میں نہیں رہوں گا کیوں میں نمت بنوں؟ اس میں سادھو تھے, منی تھے دیپائن, چلے گئے 12 ورش کے لیے. جب 12 ورش پورے ہو گئے اور دوارکا جلی نہیں تو انہوں نے دیکھا چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوا. نیمی ناتھ سوامی تو بولتے تھے کہ دوارکا جل جائے گی اور وہ تو جلی نہیں. اب پورے کیلکولیشن کے ساتھ میں وہ آئے وہاں, لیکن کیلکولیشن میں وہ جو مہینہ بڑھ جاتا ہے نا ہندی مہینوں میں, وہ کیلکولیشن ان کے برابر بیٹھا نہیں اور کچھ مہینے باقی تھے. اور جب دوارکا کے نزدیک آ کر کے وہ رکے, انہوں نے وہاں اپنا ڈیرا ڈالا سمجھیے آپ جو بھی, تو پھر ادھر سے یادو راجکمار نکل رہے تھے, پیاسے تھے, کنوں میں پڑی ہوئی جو شراب تھی جو 12 سال میں اور زیادہ مادک ہو گئی تھی, پڑی پڑی پیاس کے کارن انہوں نے وہ پی اور دماغ میں چڑھ گئی. منیراج کو اب شبد کہنا چالو کیا, ان کے مکھ سے ان کے بائیں کندھے سے پتلا نکلا اور سب کو اس نے پوری دوارکا نگری کو بھسم کر دیا. مجھے تو اس پرسنگ میں صرف یہ بتلانا ہے کہ شری کرشن اور بلدیو نے اپنے ماتا پتا کو بچانے کا بہت پریاس کیا. ہزاروں ہاتھیوں کا بل ہوتا ہے کرشن بلدیو میں, نارائن تھے بھائی صاحب, 3 کھنڈ کے ادھیپتی تھے کرشن, سادھارن ویکتتو نہیں تھے. کہاں سے لاؤں گے؟ لیکن ادے اپنا ادے اپنے ساتھ ہے, اپن اپنا ادے ماتا پتا کو نہیں دے سکتے, کیا کریں بولو. ہم تو بہت چاہتے ہیں ان کا بھلا, ہم اپنا پھل ان کو نہیں دے سکتے. یہاں دیکھو ایسا لوگ کہتے ہیں, آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمارے وہاں تو ایسا لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صاحب ہم تو کچھ دھرم کرتے نہیں ہیں, ہمارے پتا جی دادا جی بہت دھرم کرتے تھے, انہیں کا کچھ کیا گھر ہمارے کچھ آڑے آ گیا, وہ کرتے تھے تو وہ اس کا پھل ہمارے کو مل گیا. ایسا نہیں ہے جین درشن میں کسی کے کرم کا پھل کسی دوسرے کو مل جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کسی کے پاپ کرم کے پھل کو بھوگنے کو تیار ہو کیا؟ نہیں نہیں ہم تو بھوگیں گے کسی کے پاپ کا پھل. تو جب آپ کسی کے پاپ کے پھل کو بھوگنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کسی کے دوارا کیے گئے پنیہ کے پھل کو بھوگنے کے لیے آپ کیوں تیار رہتے ہیں؟ یہ تو نیائے نہیں ہے. پرکرتی میں اس پرکار کی ویوستھا ہی نہیں ہے. سب کو اپنے اپنے کرم کا پھل بھوگنا پڑتا ہے. بارہ سال بعد مزواری کا نگری جل گئی, ہاتھی لگا دیے گئے, رتھ لگا دیے گئے اور بہت پریاس کیا اور انت میں وہ رتھ کھسکا ہی نہیں, ایک قدم بھی ایک انچ بھی آگے نہیں چلا. کرشن اور بلدیو دونوں ہی ہاتھیوں کی جیسے لگ گئے, ہم ہی نکال لیں گے ان کو, ماتا پتا کو بچا لیں گے. لیکن رتھ ٹوٹ گیا اور وہ اگنی ان کے اوپر گر گئی, وہ بچانے میں سمرتھ نہیں ہو سکے. وہ پنیہ کہاں سے لاؤ گے؟ انکولتائیں تو لانے کا پریاس بہت کر سکتے ہیں, کوشش بہت کر سکتے ہیں, لیکن ادے اپنا اپنا. ایک پریوار میں رہنے والے ایک ویکتی کا ادے ایک سمان نہیں ہوتا, ایک بھی ویکتی کا ادے دوسرے ویکتی کے سمان نہیں ہے. سب کا اپنا اپنا ادے ہے, سب کا شریر اپنا اپنا ہے, سب کی شریر کی اوستھا اپنی اپنی ہے, سب کا دکھ درد اپنا اپنا ہے, سب کی ٹینشن اپنی اپنی ہے. کوئی تو کسی گھٹنا میں بہت ٹینشن کرتا ہے اور کسی کو بالکل ٹینشن نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے گھر میں, چار لوگ ہیں گھر میں اور کسی کو تو بات بات میں ٹینشن ہو جاتی ہے اور کسی کو بالکل ٹینشن نہیں ہوتی. آپ بنا مطلب کی ٹینشن کرتے ہو کہ ہاں بس ہمیں تو چنتا ہوتی ہو جاتی ہے. ادے اپنا اپنا, باندھنے والا بھی میں, اس کا ادے بھی مجھے ہی آئے گا اور بھوگوں گا بھی میں. کرم کے پھل میں ملے سہیوگ, ان کا نام تھا نو کرم. ٹھیک ہے, نو کرم کے ملنے پر اب اس کے پاس میں ایک آپشن ہے. وہ آپشن کیا ہے کہ نوین کرموں کا بندھن نہیں کرنا ہو تو نو کرم کے ساتھ میں جڑان نہیں کرے تو نئے کرموں کا بندھن نہیں ہوگا. اور یدی وہ نوین کرموں مطلب نو کرم کے ساتھ میں جڑان کرتا ہے, راگ دیش کرتا ہے, ہٹانے اور پٹانے کی پروتی کرتا ہے, تو سمجھ لیجئے آپ واپس اس کو نئے کرموں کا بندھن ہوتا ہے. یہ پریشانی ہے سب سے بڑی. تو اس طرح سے دریہ کرم سے نو کرم, نو کرم میں جڑان کیا اس کا نام بھاو کرم, اور بھاو کرم کے نمت سے پنہ دریہ کرم کا بندھن. اس طرح سے سنسار چکر چلتا رہتا ہے. اس چکر کو جو لوگ توڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ بھاو کرم نہ کریں, مانے راگ دویش نہ کریں. ہری بھدر سوامی سے پوچھا ایسا کہ صاحب مکتی کس کا نام ہے, موکش کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا خشائے مکتی. کیسے مکتی ہوگی, موکش کیسے ہوگا یہ بتلاؤ. تو پتا کیا جواب دیا انہوں نے, نہ شویتام برتوے نہ دگمبرتوے نہ ترک وادے نہ چتتو وادے نہ پکش پاتا شرین مکتی خشائے مکتی کل مکتی. کیسے ہے مکتی؟ کسی پکش سے نہیں ہے, کسی پنت کے ویاموہ سے نہیں ہے, کسی آگرہ سے نہیں ہے, نہ ترک وترک سے ہے, نہ کسی کے آگرہ سے ہے. تو کیسے ہے کہ ایک ہی آدھار ہے خشائے مکتی. خشائے مکتی کا نام مکتی ہے, اور کسی چیز کا نام مکتی نہیں ہے. آپ کس کا نام مکتی سمجھتے ہیں؟ آپ جھگڑے کا نام مکتی سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا, یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا, وہ کہتے ہیں کہ میں مہان, وہ کہتے ہیں میں سچا, یہ کہتے ہیں میں سچا. آپ اس راگ دیش میں الجھے ہیں. کہتے ہیں جب تک کشائے مکتی نہیں ہوگی تب تک مکتی کی پراپتی نہیں ہوتی, کیونکہ کشائے کا بندھن واستوک بندھن ہے, باقی جڑ کرم ہے وہ تو پودگلک بندھن ہے. یہ کیا دم ہے, پودگل کا بندھن اصلی بندھن نہیں ہے. اصلی بندھن تو راگ دیش کا بندھن ہے, راگادی پریناموں کا بندھن ہے, کام کرودادی بھاووں کا بندھن ہے. خشائے سے بندھا ہے جیو, موہ کا بندھن سب سے بڑا بندھن ہے. ہم کہتے ہیں ایک گائے کو یدی آپ کو کہیں پکڑ کر کے لے جانا ہو تو آسان کام نہیں ہے. ہم نے اس کے گلے میں رسی باندھی, گائے کے گلے میں جنجیر باندھی اور اسے کھینچ کر کے لے جانے کا پریاس کیا, وہ نہیں جاتی ہے, نہیں بنتی ہے وہ. اتنا ہم نے طاقت لگائی बहुत ताकत लगाने के बावजूद भी वो एक कदम नहीं चली, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि हमें घसीटती हुई ले जाए, ऐसा भी संभव है। लेकिन हमने उसके बछड़े को प्यार से सहला करके अपने साथ साथ में पकड़ करके ले गए तो वो गाय पीछे पीछे चली आती है। बोलो अब वो कैसे आ गई गाय? अब कौन सा बंधन है? हमने किस चीज से बांधा है उस गाय को? वो ममता से बंधी है, वो मोह से बंधी है, राग से बंधा है। राग का बंधन, प्रेम का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, ये बंधन तोड़ने योग्य है। और जिसके मोह का बंधन टूट जाता है उसके कर्म के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। कषाय का बंधन, मोह का बंधन, राग द्वेष का बंधन, हम चर्चा करेंगे इसके मोहनी कर्म के अंतर्गत। अभी तो अपन बात प्रारंभ करते हैं ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म से। आठ कर्मों में प्रारंभिक दो कर्म हैं जिनका नाम है ज्ञान आवरणीय और दर्शन आवरणीय। क्या नाम कर्मों के? आवरण का मतलब होता है ऊपर से पर्दा, पर्दा डाल दिया गया। किसके ऊपर पर्दा डाल दिया? कि ज्ञान और दर्शन के ऊपर जो पर्दा डाल गया है उसका नाम है ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण। ज्ञान पे पर्दा डालना उसका नाम ज्ञान आवरण, दर्शन के ऊपर पर्दा डालना उसका नाम दर्शन आवरण। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण नाम के दोनों कर्म ज्ञान और दर्शन को ढकने का काम करते हैं। जिसने हमारी मति की भिन्नता दिखाई देती है उन सब के पीछे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का योगदान है। किसी का क्षयोपशम कम होता है, क्षयोपशम माने ज्ञान की प्रकट अवस्था, उसे कहते हैं क्षयोपशम। क्षयोपशम माने कितना हमारा ज्ञान मौजूद है। जैसे कभी ऐसा प्रयोग करते हैं कि इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इट मीन्स उनकी कैचअप पावर बहुत अच्छी है, ग्रास्पिंग पावर बहुत है, वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उनका क्षयोपशम ज्यादा है। जैसे आजकल के बच्चों में, छोटे छोटे से बच्चे, आप यदि अबाउ 60 वालों की बात करेंगे, 40-50 एज वालों की बात करेंगे, तो उनसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर उन छोटे छोटे से बच्चों में है। इतना फास्ट कंप्यूटर चलाते हैं, इतना आपके मोबाइल के अंदर मेन भाई कुछ हो रहा हो ना तो आप छोटे बच्चों को कहो तो वो फटाफट उसमें कर देंगे। तो अपने को ऐसा लगता है हमारी तो सारी पढ़ाई बेकार है। वो तीन तीन चार चार साल के बच्चे है, अभी आज के कल के पैदा हुए बच्चे, वो फटाफट उसमें कुछ भी कर देंगे, उसकी ट्यून चेंज कर देंगे, उसमें वॉलपेपर चेंज कर देंगे, उसमें कुछ का कुछ लगा देंगे। हमें डर लगता है कोई बटन दबाते हुए, और वो बिल्कुल इतना फ्री होकर के उसको काम में लेते हैं, यूज लेते हैं उसको। तो उनका क्षयोपशम, जिसका क्षयोपशम तेज होता है उसके ज्ञानावरणी कर्म मंद होता है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, क्षयोपशम और कर्म। कर्म मंद हुआ, क्षयोपशम बढ़ा। क्षयोपशम मंद है, इट मीन्स कर्म का उदय तीव्र है। ख्याल में आ रही है दोनों बातें? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय तीव्र होगा तो क्या होगा? क्षयोपशम मंद। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय मंद होगा तो क्षयोपशम ज्यादा। क्षयोपशम का उघाड़ वो ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर बेस है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय का क्षयोपशम ज्यादा है। एक इंद्रिय जीव, उसका क्षयोपशम कितना है? सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जान सके, इतना सा क्षयोपशम है एक इंद्रिय जीवों का। दो इंद्रिय का क्षयोपशम, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम समझ रहे हैं ना क्या चीज है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम दो इंद्रिय का ज्यादा है। इसका मतलब दो इंद्रिय जीव के ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, ज्ञान की प्रकटता ज्यादा है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कैपेसिटी है उसमें। स्पर्शन और रसना दो इंद्रियों के माध्यम से वो जान सकता है। ऐसे तीन इंद्रिय जीव, उसका क्षयोपशम और ज्यादा है। तीन इंद्रिय की अपेक्षा से चार इंद्रिय जीवों का क्षयोपशम और ज्यादा है। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, चार इंद्रियों से उनका ज्ञान होता है। पंचेंद्रियों का क्षयोपशम और ज्यादा है, उनमें भी सैनी पंचेंद्रीय जीवों का क्षयोपशम और ज्यादा है। हम लोग सब सैनी पंचेंद्रीय हैं, इसका मतलब हमारे ज्ञानावरणी कर्म बहुत मंद है और उसका क्षयोक्षम विशेष होने से हमारे में जानने की, समझने की, सीखने की शक्ति बहुत है। ये बात अलग है, मुझे पता है कई लोग ऐसे मिलते हैं, कई लोग ऐसे दिखते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी बचपन में तो बहुत जल्दी याद होता था, आजकल पता नहीं क्या हो गया, याद नहीं होता। नहीं, हमारा क्षयोक्षम थोड़ा मंद है, हमें भेद प्रभेद याद नहीं होते। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपकी जो नए नए शब्द मिलते हैं, जो जैन दर्शन के जो पारिभाषिक शब्द दिखते हैं, ये बड़े टिपिकल हैं, थोड़े समझ में नहीं आते हमारे को। अच्छा, आपको याद नहीं होते, आपकी स्मरण शक्ति कम है, सच में कम है आपकी स्मरण शक्ति? कि हाँ पंडित जी बिल्कुल, क्या बतलाएं आपको, बचपन में तो बहुत चीजें याद हो जाती थी। कभी कभी आश्चर्य लगता है जब 60 वर्ष की उम्र वाले, 60 65 की जिनकी उम्र हो गई है, चार चार पांच पांच जिनके बच्चे हैं, जिनके बहुएं हैं, दो दो तीन तीन बच्चियां न मालूम कौन कौन सी जगह पर गई हैं, और उन सबके बच्चे पोते कहां कहां से आई हैं, कौन कौन से गांवों की रहने वाली हैं, ऐसे ऐसे गांवों के नाम, और ऐसे ऐसे हम हमारी जो समझी है ना, वो न मालूम कौन कौन है, किसका क्या रिलेशन है, क्या ये सब बचपन में याद किए होंगे ना अपने? नहीं, कौन सी उम्र में जाके याद किए ये सब? 60 से, उससे पहले तो थे ही नहीं। उस उम्र के बाद में याद हुए हैं हमारे को। कुल मिलाकर के बात ये है, रुचि जिधर की रुचि होती है, क्षयोक्षम भी उधर काम करता है। आपकी रुचि यदि तत्व ज्ञान में है तो क्षयोक्षम भी आपका इधर काम करेगा। अपने यहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान हुए जयचंद जी छावड़ा, नाम सुना होगा आपने, समय सारा जी की व्याख्याएं की उन्होंने, उनके भावार्थ वगैरह लिखे उन्होंने। 60-63 वर्ष की उम्र के बाद में लिखना प्रारंभ किया, उसके बाद में उन्होंने लेखन आदि कार्य प्रारंभ किया। ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि कम है, बात ऐसी है कि आपकी रुचि कम है, बात ऐसी है कि हम समझना नहीं चाहते हैं, बात ऐसी कि हमारे को ऐसे लगता है कि अरे यार रहने दो, क्या करेंगे और तो कितना पढ़ेंगे अपन, अपने को उधर की रुचि है। अभी देखो आप, जिनको खेल की रुचि होती है, नए नए नियम बदल रहे हैं, 2020 चालू हो गया है क्रिकेट में, है ना, उनके रूल्स बदल रहे हैं, नए नए प्लेयर्स आते हैं, सारे प्लेयर्स के नाम, और न केवल अपनी टीम के, अभी तो कौन सी कंट्री की टीम के अंदर कौन सा अच्छा बेस्ट प्लेयर है, कौन सा बेस्ट फास्ट बॉलर है, किन किन को जानते हैं अपन, नए नए लोगों को, और नए नए एक्टर्स को जानने लगे हैं आप। शाहरुख खान को जानते हैं कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्यों, कब से जानते हैं शाहरुख खान को? अमिताभ बच्चन को पहचानते हो तब तो समझ में आती है, सलमान खान शाहरुख खान को कैसे पहचान रहे हैं आप? वो कब से पहचानना चालू किया आपने? नए नए पता नहीं, अभी रिसेंट में कोई पिक्चर आई है और आपको उसकी नॉलेज है, ये क्या हो गया, ये कहां से हो रहा है? रुचि के अनुसार क्षयोक्षम चलता है, जिधर की रुचि होगी उधर वो चीज तुरंत पकड़ में आएगी। आपकी यदि रुचि है खाना बनाने की, तो आप अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे जो कुछ भी व्यंजन है वो आप सीख लेंगे फटाफट, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनाया जाता है, कहीं आपने कोई नई चीज खाई और तुरंत ये कैसे बनाया आपने, अच्छा अच्छा तो मैं देख लूं कैसा, कैसे मैं ट्राई करूं, वो फटाफट उसको सीख लेते हैं आप, हो जाता है, प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, हो जाता है। हम यहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बारे में कह रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे, आप स्मरण नहीं कर पाएंगे, आपकी स्मरण शक्ति चली जाएगी, आपका याद किया हुआ भूल जाएगा, तो ज्ञानावरणी कर्म के कारण होगा। दर्शनावरणी कर्म के कारण आप देख नहीं पाएंगे, अवलोकन नहीं हो पाएगा, अवलोकन में बाधा होना वो कौन से कर्म का काम है, वो दर्शनावरणी कर्म का काम है। ज्ञान में बाधा होना वो कौन से कर्म का काम है, वो ज्ञानावरणी कर्म का काम है। ज्ञान और दर्शन नाम के ये दोनों ही गुण हैं आत्मा के, जिन गुणों के होने में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म बाधक होते हैं, वो बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने कुछ किया भूल गए, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा यार हमको पक्का याद हो गई ये चीज। कभी ऐसा भी होता है यहाँ तो नहीं होता होगा लेकिन वहाँ तो होता है कि बाजार गए कुछ सामान लेने के लिए और कुछ चार चीजें बतलाई थी, दो तो ले ली, अब दो याद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या मंगाया था, वापस लौट करके आ जाते, बिना लिए हुए वापस लौट के आ जाते हैं। ज्ञानवर्णी कर्म का चित्त हो जाए। कभी कभी आप ऐसा कहेंगे कि साहब ये हमारे को समझ में नहीं आती साहब ये बातें, कि क्यों नहीं समझ में आती, ज्ञानवर्णी कर्म का तीव्र हो जाए। हम अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम हमारी याददाश्त क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, है कोई उपाय आपके पास में? लगन भाई आप तो कह देंगे बादाम खाओ। बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है या नहीं बोलो, बादाम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है? रमेश भाई नहीं बढ़ती। अरे याददाश्त तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय क्षेत्रक्षम पर निर्भर करती है भाई, खाने पीने से उसका क्या संबंध है? खाना पीना अलग चीज है, क्षेत्रक्षम अलग चीज है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षेत्रक्षम खुलेगा तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी। फ्री में मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ आपको, कैसे बढ़ाई जा सकती है देखना। यदि इसकी क्लासेस चलाई जाए तो 100-100, 500-500 डॉलर लेकर के फीस लेकर के आए लोग सुनने के लिए कि हमारी याददाश्त कैसे बढ़ाएं। हम टेक्निक सिखाते हैं, लोग 3-3 घंटे का सेमिनार लेते हैं। देखिए भाई वो जो कुछ भी करते हो और जो कुछ भी कला सिखाते हो, हम तो यहाँ ये कला सिखाते हैं कि ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र उदय के कारण आपको याद नहीं होता वो ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधा था। आप उसके कारण की तरफ थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ओ इस वजह से ज्ञानावरणी कर्म बंधा है, आप उससे बचिए। ज्ञान की विराधना की थी तो ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। क्यों बंधता है ज्ञानावरणी कर्म? आप ये तो सोचते हैं कि हमारे को याद नहीं होता, याद नहीं होता तो आप लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फिर भी याद नहीं होता है। 10-10 बार पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, कई कई बार कैसेट सुनते हैं, सीडी सुनते हैं, समझाने वाले होते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। किताब से नहीं होता है, किताब से समझ में नहीं आता है, समझाने वाले से भी समझ में नहीं आता है। डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत क्षेत्रक्षम के ऊपर, आपका खुद का क्षेत्रक्षम कितना है। समझेगा अपने आप से, नहीं समझेगा किसी के बाप से, कोई नहीं समझा सकता है। गुरु से ज्ञान नहीं होता। गुरु यदि इस बात का अभिमान करे कि मैं समझाता हूँ, मैं समझा सकता हूँ, मैं इस तरह से समझाऊंगा साहब अभी समझ में आ जाएगा, भ्रम हो गया है तुम्हारे को, काय का अभिमान पालते हो, तुम नहीं समझा सकते किसी को। आप किसी बालक को जो व्यक्ति 2+2=5 बोलता है आप उसको समझा सकते हो? अरे साहब बाएं हाथ का काम है, समझा दूंगा मैं, समझा सकते हैं ना, 2+2=4 होते हैं, इतना ही तो समझाना है, बहुत आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन यदि वो नहीं समझे तो आप क्या कर लो बोलो? आप 100 सिर के हो जाओ तो भी यदि उसके नहीं समझने की पात्रता है तो वो नहीं समझेगा भैया, हम कितनी भी कोशिश कर लें। क्षेत्रक्षम जिसका मंद है उसे नहीं समझाया जा सकता है, उसे नहीं सिखाया जा सकता है। आपने शिवभूति मुनिराज का उदाहरण सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है शिवभूति मुनिराज। शास्त्रों में अपने कथानक आता है, बहुत ज्ञान का क्षेत्रक्षम उनका मंद था, क्षेत्रक्षम मंद था। इसको यदि दूसरी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं? ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र था, ठीक है? ज्ञान उनके ज्ञान का क्षेत्रक्षम मंद था माने ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था। क्या होता था? संघ में रहते थे, आचार्य पढ़ाते थे, उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, सबको पढ़ाते थे, उनको भी पढ़ाते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनको कुछ याद नहीं होता था, सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। कुछ भी कहो साहब, थोड़े दिन, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, पांच दिन, महीना, दो महीना, आखिर कब तक टॉलरेट करेंगे उस चीज को? वो बर्दाश्त नहीं होती फिर, वो औरों को बर्दाश्त नहीं होती, इनकी वजह से हम और कुछ नहीं पढ़ पाते, आप उन्हें उनको बतलाते रहते हो, उन्हें उनको सिखाते रहते हो तो फिर भी वो सीखते नहीं है। लास्ट में फाइनली आचार्य श्री ने ऐसा डिसीजन लिया कि देखो शिवभूति, तुम्हारे को हम बहुत समझाते हैं लेकिन भाई तुम्हारे को कुछ याद नहीं होता, इसलिए एक काम करो, हम तुम्हारे को एक लाइन का एक मंत्र देते हैं, बस तुम वो मंत्र याद करो और बस उतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और बाकी ये सब तुम अलग, तुम्हारे को संघ से हम फ्री करते हैं। उनको संघ से बाहर कर दिया गया और चार शब्द उनको बतलाए गए। दो शब्द थे समझो आप, जिनको चार नहीं किया सबसे वाला गलत करो तो मारुस मातुस, कितना सा शब्द था मारुस मातुस। अर्थ क्या था उसका? उसका अर्थ ये था माँ माने मत करो। माँ आपने सुना है, माँ पहले दंड व्यवस्था चलती थी ऐसी भू भूमि के काल में, हा माँ धिक ये कुलकरों ने दंड व्यवस्था चलाई थी ऐसी तीसरे काल में ऋषभदेव के पहले, ऋषभदेव स्वामी के पूर्वजों की बात करता हूँ मैं, नाभी राय के पूर्वजों की बात करता हूँ, उन्होंने हामाधिक दंड व्यवस्था चलाई थी। कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई अपराध करता था तो सिर्फ इतना सा यदि कोई व्यक्ति उसको सजा देते हुए कह दे इसका मतलब उसको बहुत बड़ी सजा मिल गई, इसमें सुधर जाता था, इसके बाद में वो दोबारा अपराध नहीं करता था। फिर धीरे धीरे ये दंड व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, लोगों को असर नहीं होने लगा, तो फिर हा के साथ में दूसरी दंड व्यवस्था दूसरे कुलकर के माध्यम से चलाई गई जिसका नाम था माँ मत करो, मत करो माँ। हा ये क्या किया, हा मैंने ये क्या किया, जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, दो साल का बच्चा है और आपने उसको इतना की दिया, ये क्या किया, तो वो डर जाता है, वो दोबारा नहीं करेगा। इतनी सी व्यवस्था दंड व्यवस्था। और यदि कदाचित किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आगे से मत करना, तब तो समझ लो कोई बड़ी सजा दे दी उसको माँ। और तीसरी दंड व्यवस्था उसके बाद में कुलकरों के युग में चलती थी, उसका नाम है धिक, धिक्कार है तुम्हारे को कि तुमने जो काम किया है ये आगे मत करना, धिक्कार है तुम्हारे को, तुमने अपने जीवन में ये क्या काम कर लिया, ये करने योग्य काम नहीं था। तो माँ शब्द का अर्थ होता है मत करो, मारुस रोष नहीं करना और मातुस तोष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, कषाय नहीं करना, इतना सा उपदेश था। ये बात भी याद नहीं रही श्रीमती मुनिराज को, शिवक्षम मंद था, उपदेश तो देते थे समझ में नहीं आती थी, संघ से अलग भी हो गए थे, अब कौन समझाएगा। मारुस मातुस इतना सा भी याद नहीं रहा उनको, संघ आगे विहार कर गया, आचार्य श्री आगे बढ़ गए संघ सहित, वे बेचारे किसी नदी किनारे बैठे थे, सोच रहे थे पता नहीं क्या कहा था, जाने क्या कहा था। अब कोई एक कोई महिला वहां नदी किनारे दाल धो रही थी, तो दाल धोती हुई को देख करके उन्होंने राज ने पूछा, भाई क्या करती हो, क्या कर रही हो, तो उसने कहा तुस मास भिन्नम, तुस माने छिलका और मांस माने दाल, मूल जो पार्ट है, भिन्नम इनको अलग अलग करती हूँ, तुस मांस भिन्नम। अरे ऐसा ही तो कुछ कहा था, पता नहीं ऐसे ही शब्द थे कुछ, तुस मांस भिन्नम। अब ये तुस मांस भिन्नम भी याद नहीं रहे, उनको तो स्मरण शक्ति बहुत कम थी, लेकिन क्योंकि देखो जो चीज सुन करके हम जानना चाहते हैं वो सुनने की अपेक्षा से देखने पर उस चीज की ग्रास्पिंग ज्यादा होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम किसी भी चीज को सुनकर के समझना चाहे ऑडियो और वीडियो, तो ऑडियो प्रवचन की अपेक्षा से यदि वीडियो प्रवचन सुनते हैं तो समझाने वाले के हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, समझाने का तरीका, कई चीजों के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। तो अब वो दाल धोते हुए देखा था और कहा कि ये कुछ भिन्न भिन्न, कोई छिलका अलग है और दाल अलग है, और इस तरह का कुछ उनके माइंड में चलने लगा। और वो चलते चलते चिंतन इस प्रकार का चला कि मानो मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, और ऐसा भेद विज्ञान हो गया। फिर पता है आपको क्या हुआ थोड़ी देर बाद में, इस चिंतन के कुछ देर बाद में क्या हुआ, देव लोग कहीं जा रहे थे और वो आचार्य श्री संघ के साथ में बैठे हुए थे। संघ के मुनिराजों ने पूछा, आचार्यश्री से, आचार्यश्री ये देवलोक ये कहाँ जा रहे हैं, अभी ये किधर जा रहे हैं। आचार्यश्री ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, दिव्य ज्ञान का प्रयोग करके देखा कि ओहो, जिन शिवभूति को हमने संग से निष्कासित कर दिया था उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, व्यारंत परमात्मा बन गई। कैसा हो जाता है, इसलिए क्षेत्रम मंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्षेत्रम तीव्रता में बदल जाता है। मंद क्षेत्रम तीव्र हो जाता है, तीव्र क्षेत्रम मंद पड़ जाता है, ये परिवर्तन होते रहते हैं, मंद से तीव्र और तीव्र से मंद। कौन करता है ये परिवर्तन, हमारे भाव, हमारे परिणाम। वर्तमान में हमारे कैसे भाव हैं, जैसे भाव होंगे उन भावों के आधार पर वैसा ही परिवर्तन हो गया कर्मों में। आपको पता नहीं है, आप यहाँ बैठ करके जब सुन रहे हैं तो अंदर में कर्मों में कितना परिवर्तन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कितने परिवर्तन हो रहे हैं, कितनी उथल पुथल हो रही है अंदर कर्मों में। अंदर में तूफान चल रहा है कर्म प्रकृतियों में, संक्रमण हो रहा है, उत्कर्षण अपकर्षण हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, बदल रहे हैं कर्म, आंधी तूफान चल रहा है अंदर कर्मों में, हमें नहीं मालूम। दो मित्र थे, एक मित्र पिक्चर देखने के लिए जा रहा था तो उसने दूसरे से कहा कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं। उसने कहा नहीं नहीं भैया, मैं पिक्चर देखने नहीं जा रहा, मेरे तो पाठशाला का समय है, स्वाध्याय का समय है, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। अरे यार, तू भी इस उम्र में कहाँ मंदिर जाता है, चल अच्छा पिक्चर देख करके आते हैं। नहीं माना वो, तो वो मंदिर चला गया और वो मूवी देखने चला गया। जब वापस लौट करके आए तो जो मंदिर गया था ना, क्या उस मंदिर जाने वाले के रास्ते में ठोकर लग गई, और रास्ते में ठोकर लग गई और पैर के अंगूठे में थोड़ी सी मोच आ गई, पैर में मोच आ गई थोड़ा सा चलने में। और वो जो दूसरा गया था ना, क्या जो पिक्चर देखने के लिए जा रहा था, उसको वहां से लौटते समय उसको कोई गिफ्ट मिल गया कि कोई उसको कोई लकी ड्रॉ में उसको कोई कूपन में कोई गिफ्ट खुल गया उसके कुछ, और लौट करके आया, अरे तेरे पैर में लग गई कि देख तेरे से कही थी मैंने क्या कि मेरे साथ में पिक्चर देखने चलता तो तेरे पैर में नहीं लगती है, ये कांटा नहीं चुभता, ये पैर में मोच नहीं आती, और जाओ मंदिर। देखो देखो कैसा लगता है कि जो व्यक्ति मंदिर गया है उसके साथ में कैसा, और जो मूवी देखने गया है उसके साथ में कैसा। लेकिन भाई साहब वस्तु स्थिति ये है, संत मुनिराज उसके पीछे कारण बतलाते हैं, वो ये कहते हैं आपको पता नहीं है इस व्यक्ति के साथ में बहुत बुरी परिस्थिति बनने वाली थी, जो मंदिर जाने के परिणामों में अंदर की अंदर बदल गई, सूली पर चढ़ाया जाने वाला था जो शूल लग करके रह गया, इतनी बड़ी इसके साथ में ट्रेजडी होने वाली थी जो इतने से में निपट गया, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था जो सिर्फ पैर में मोच आकर के रह गई। ये परिवर्तन हो जाते हैं परिणामों से, मंदिर आने के परिणामों से इतने परिवर्तन हो जाते हैं। स्वाध्याय करने का भाव मन में आता है उससे अंदर कर्मों में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। सिर्फ भाव किया आपने, अभी स्वाध्याय कर लो तो पता नहीं क्या होगा, स्वाध्याय करने का विचार मात्र आया ना कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। पर स्वाध्याय का मतलब किसी और के लिए तो है नहीं, अपने आप के लिए है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, इतनी सी बात का नाम ही तो स्वाध्याय है। हम क्या करते हैं यहाँ, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ किस तरह से अच्छी हो सकती है ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है, हम भी यहाँ वही कोशिश कर रहे हैं, सुख कैसे हो सकता है, दुखी क्यों है, दुख के कारण क्या है और सुख के कारण कौन से हैं, ये जीव सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, वही तो कोशिश चल रही है। इसी का नाम तो स्वाध्याय है। इन परिणामों से कर्मों में उथल पुथल होती रहती है। आपको ऐसे लगेगा कि पाप करने वाला व्यक्ति देखो आप करोड़ों में खेलता है, और ये देखो मंदिर जाते थे नुकसान हो गया, फैक्ट्री में घाटा लग गया, बिजनेस में लॉस हो गया, इनको कैसा लगता है कितने नुकसान हो गए। अरे भैया ये ऊपरी ऊपरी देखते हो, आपको पता नहीं है ये कर्मों में जो परिवर्तन चल रहा है, क्या होना था और क्या हो गया। देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसको कुछ नुकसान में कमी हो ना, तो इसको कुछ मालूम नहीं चलता। जैसे समझ लीजिए किसी व्यक्ति के कैंसर होना हो मान लीजिए, और उसने स्वाध्याय चिंतन मनन के परिणामों से और वो उसने जाकर के डॉक्टर को चेकअप करवाया, अब वो सब कैंसर कुछ नहीं निकला, और छोटी सी गांठ निकल करके रह गई, ऑपरेट हुई, ठीक हो गया। अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, जबकि एक्चुअल पोजीशन ये थी कि आप यदि इस चीज से नहीं जुड़ते, आप यदि इससे जुड़े हुए नहीं होते तो कैंसर होने वाला था। वो जो कर्म बंधे हुए थे ना, वे बंधे हुए कर्म अपकर्षित होकर के कम होकर के उदय में आए हैं। हमें तो तब लगता है कि जब डॉक्टर पहले दिन तो हमारे को बिल्कुल रिसर्च करके, जांच करके, बिल्कुल सारे टेस्ट करके सब बतलाए कि आपके कैंसर है, और फिर हम आए मंदिर, और फिर हम दूसरे दिन जाएं और फिर टेस्ट कराएं, तो फिर सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आए नॉर्मल, तो लगता है मंदिर जाने से कुछ हुआ। मैं जो अपने आप हो गया ना अंदर में, उससे हमारे को कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखता। हमें तो ऐसे लगता है कि पहले तो कोई हमारे को सजा सुना दे 10 साल के जेल की, और फिर दूसरे दिन कहे कि नहीं नहीं ये तो गलत फहमी हो गई थी, हम तो आपको भाई इज्जत बरी करते हैं। तो हमारे को लगता है कि बहुत बड़ा संकट चल गया, हे भगवान आपका ही उपकार है। पहले तो संकट आए और फिर संकट चले तो लगता है कुछ हुआ। अरे ये स्वाध्याय के परिणामों से अंदर के अंदर हो रहा है। आप अभी यहाँ शांति से बैठे हैं, आपके पांचों इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही है, आपका दिमाग बराबर काम कर रहा है, आपके हाथ पांव बराबर काम कर रहे हैं, इसके पीछे कोई न कोई इंटरनल कर्म का उदय काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। यदि वो कर्म का उदय अंदर से बदल जाए तो अभी बैठे बैठे पैरालिसिस का अटैक आ जाए, आप खड़े नहीं हो सकते हैं यहाँ से। ये तो कर्म का खेल है, और क्या है बताओ मेरे को। हमें ये कर्मों की फिलॉसफी यदि पता नहीं होगी तो हम व्यर्थ का अभिमान करते रहेंगे, ज्ञान का अभिमान करते रहेंगे, सिखाने का अभिमान करते रहेंगे, समझाने का अभिमान करते रहेंगे। हमारे समझाने से किसी को समझाया नहीं जा सकता है, सिखाने से किसी को सिखाया नहीं जा सकता है, अपने आप सीखेगा। क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक इस बात का अभिमान करता है मेरे पढ़ाए हुए बहुत अच्छे अच्छे IAS हो गए, कलेक्टर हो गए, न मालूम कितनी कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं मेरे पढ़ाए हुए। आपको पता है कैसा पढ़ाता हूँ मैं, आज भी लोग याद करते हैं कि क्या पढ़ाते हो साहब आप, गजब करते हो। वो अभिमान करता है इस बात का। हम कहते हैं ये हमारा मूर्ख बच्चा है, बेटा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, मगज में नहीं बैठती बिल्कुल भी, पढ़ाओ इसको। स्कूलों में कॉलेजों में ऐसी स्थितियां तो कई बार बनती है कि कॉलेज से, स्कूल से, क्लास से स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाता है। कभी होता है, यहाँ भी होता है। पढ़ने में बहुत डल था, समझ में नहीं आता था, वार्निंग दी गई, कंप्लेन की गई, पेरेंट्स के पास में चिट्ठी भेजी गई, उनको मेल किया गया, उनको कॉल किया गया पेरेंट्स को कि भैया नहीं समझ रहा है, ये नहीं मानता है, ये नहीं सुधर सकता है। और फिर लास्ट मोमेंट पे ऐसी स्थिति आती है कि वो प्रिंसिपल लिख करके देते हैं कि इनको करेस्टिगेट किया जाता है। ऐसा होता है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई बालक उसको क्यों स्कूल कॉलेज से निकाला गया, बतलाओ मेरे को। सिर्फ नालायक है, सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। अब वो माता पिता ये कहते नहीं समझता था तब तो आपके पास में लाए थे गुरु जी, हमने तो आपका बहुत नाम सुना था कि आप समझाते हो, सिखाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, आप इसको भी सिखाओ ना। तो पता है क्या कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं सिखा सकते, इसको आप ले जाओ, मैं इसको नहीं समझा सकता, मैं इसको नहीं सिखा सकता, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। क्यों क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहने का मतलब ये है कि जो बालक पढ़ता है वो अपनी योग्यता से पढ़ता है, जो सीखता है वो अपनी योग्यता से सीखता है। क्लास में रहने वाले 50 स्टूडेंट हैं, लेकिन 50 में से कौन कितना सीखेगा, किसकी ग्रास्पिंग कितनी होगी, जितना उसका शिक्षक होगा, कौन कितना समझ पाएगा, ہمیں نہیں معلوم, ہم تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کر کے سمجھا رہا ہوں, سامنے بیٹھے ہوئے آپ لوگ کتنا سمجھ پا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. کبھی کبھی کئی لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بہت فاسٹ بولتے ہیں, کچھ کو لینگویج پرابلم لگتی ہوگی, کچھ کو گجراتی اسپشٹ آتی ہے, کچھ کو انگلش, کچھ ہندی نہیں سمجھ پاتے ہیں, کسی کو تھوڑا تھوڑا ہندی سمجھ میں آتا ہے, اور کچھ ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے کو تو فلمی ہندی آتی ہے. میں نے کس کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن پھر بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں میامی میں آپ لوگوں کا شیوکشم بہت اچھا ہے, اور وہ شیوکشم اور اچھا ہونے کی دشا میں بڑھ رہا ہے. کیوں بنتا ہے گیانا ورنی کرم؟ ہم اس کے کارنوں کی چرچا کرتے ہیں. کیوں بنتا ہے گیانا ورنی کرم؟ اما سوامی آچاریہ کی شرن میں جانا پڑے گا. ستوا سوتر چھٹواں ادھیائے, اما سوامی آچاریہ, دگمبر, شویتامبر, سانک واسی, سب پرکار کی جین مانیتا, جین پرمپراؤں میں ایک سور سے جن کو سمان پراپت ہے, تین ہی تو چیزیں ہیں دگمبر شویتامبروں میں ایک سمان مانیت رکھتی ہیں, پرنموکار منتر, بھکتامر اور ستوار سوتر. سیدھانتک باتیں بہت ساری ہو سکتی ہے, کچھ مت بھید بھی ہیں, کچھ سمانتا بھی ہیں, بہت طرح کی باتیں نہیں, ان تینوں میں تو ایک روپتا ہے, پرنموکار منتر, بھکتامر اور ستوار سوتر. اس ستوار سوتر مہاشاستر میں اما سوامی آچاریہ چھٹویں ادھیائے میں گیاناورنی اور درشناورنی کرم کے بندھن کے سندرب میں کیا بات کہتے ہیں, کیوں بندھتے ہیں یہ کرم, آٹھوں کرموں کے بارے میں چرچا کیے, اپن چرچا کریں گے آگے کے سیشنز میں, کیوں بند رکھتا ہے موہنی کرم, کیوں بنتا ہے ویدنیہ کرم, ساتا اساتا سمجھیے آیو کرم, کس کس طرح سے بندتے ہیں, تو گیاناورنی کرم بندھن کے پیچھے کیا کارن ہے. تو اما سوامی آچاریہ نے کہا, مول سوتر دیا اس پرکار کا, آپ کسی بھی تتوار سوتر کی پستک میں کھول کر کے دیکھیں, اس میں لکھا تت پردوش ننہو مات سریانترایا سادنوپگھاتا گیان درشناورنیو ہو, یہ سوتر ہے. ست پردوش ننہو ماتریانترایا سادن اپگاتا گیان درشنا ورن یو ہو, سوتر بول دیا آپ نے, تو سوتر کا ارتھ کیا ہے؟ گھبرائے نہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے سب سمجھ میں آئے گا. مجھے پتا ہے فرسٹ ٹائم کوئی بھی چیز کٹھن ہوتی ہے, دھیرے دھیرے سنتے سنتے وہ چیز سرل ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بولنا آسان ہے کہ کٹھن ہے؟ اس سے پوچھو سال بھر کا بالک جس کو بولنا سکھا رہے ہیں, پڑھنا آسان ہے یا پڑھنا کٹھن ہے؟ اس سے پوچھو جو اے فور ایپل سیکھ رہا ہے ابھی, اس سے پوچھو پڑھنا کتنا کٹھن ہے, چلنا آسان ہے کہ چلنا سرل ہے؟ ہم تو دوڑتے ہیں ساتھ, چلنے میں کیا ہے, ہمارے کو کچھ لگتا ہی نہیں ہے. گاڑی چلانا آسان ہے کہ کٹھن ہے؟ بھوجن بنانا آسان ہے یا کٹھن ہے؟ آپ لوگوں کو تو ایسے لگتا ہے باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر ادھر یہ ڈالا وہ کیا, اس کو ملایا اس کو کیا, فٹافٹ بھوجن تیار کر دیتے ہیں, آسان نہیں ہے یہ تو, کتنا کٹھن ہے یہ تو ہم سے پوچھو. کمپیوٹر چلانا آسان ہے یا کٹھن ہے؟ گاڑی چلانا آسان ہے یا کٹھن ہے؟ کوئی چیز آسان نہیں ہے. فرسٹ ٹائم یدی آپ کریں گے آپ کو بہت کٹھن لگے گا, اور دھیرے دھیرے جب ابھیاس ہو جاتا ہے تو چیز سرل ہو جاتی ہے. کچھ کارن بتلائے ہیں گیاناورنی اور درشناورنی کرم کے سندرب میں. یہاں سب سے پہلا کارن کہا پردوش, ست مانے وہ پردوش, سب سے پہلا ہیتو ہے پردوش. پردوش کسے کہتے ہیں؟ پردوش شبد کا ارتھ کہا کسی دھرماتما کے دوارا کی گئی تتو گیان کی پرشنسا نہیں سہانا اور ایرشیا کرنا, وہ پردوش ہے. ستو گیان کی پرشنسا نہیں سہاتی ہمارے کو, دھارمک چرچائیں نہیں سہاتی ہمارے کو. آپ گیاناورنی کرم باندھ رہے ہیں, دیکھو کتنا آسان ہے اس کرم سے بچنا. آپ یدی گیاناورنی کرم نہیں باندھنا چاہتے ہیں تو آپ نندا نہیں کریں, لیکن لوگ کچھ بھی, کوئی ویکتی سواد جائے کر ارے کیا, جیسے تو کوئی یہیں سے سیدھے سورگ میں جانا ہے آپ کو. دیکھو کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, فرصت میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے کہیں ابھی تھوڑے ریسنٹ میں کہیں کہ فرصت نہیں ہے گھر سے مندر تک آنے کی اور خواہش ہے شمشان سے سیدھے سورگ جانے کی. مندر آنے کی فرصت نہیں ہے, سوادھیائے کی فرصت نہیں ہے, پڑھنے چنتن کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور اچھا رکھتا ہے سورگ. اور سچ کہوں دنیا کا ہر ویکتی سورگ جانا چاہتا ہے, اور مر کر کے سورگ جائے چاہے نہیں جائے, نام کے پہلے تو سب کے آگے سورگ لگا ہی دیا جاتا ہے. سورگ واسی سورگی ہے, تو ہم مر کر کے کہیں بھی جائیں اتنی تو گارنٹی ہے کہ ہمارے پیچھے والے ہمارے نام کے آگے سورگی ضرور لگا دیں گے, سورگ واسی ضرور بنا دیں گے. نرک میں کوئی ویکتی کسی کو نرک واسی نہیں کہتا, جیون بھر کتنا بھی پاپ کیا ہو, کتنا بھی چل دمب کیا ہو, مایا چاری کیا ہو, خوب لوٹ کھسوٹ کی ہو, بے ایمانی کیا ہو, لیکن پھر بھی مرنے کے بعد میں اس کے آگے کوئی نہیں کہتا نرک واسی سو اینڈ سو, سب سورگ واسی کہتے ہیں. تو پردوش کس کا نام ہے؟ گیان میں دوشن لگانا, گیانیوں کی پرشنسا نہیں سہانا, ہمیں برداشت نہیں ہوتی. اس کا نام ہے ایرشیا. ایسا ہوتا ہے آپ کسی ایک ویکتی کی پرشنسا کرو, کسی دوسرے ودوان کی پرشنسا کرو تو دوسرے ودوان کو سہاتا نہیں. گیانولنی کرم باندھ رہے ہیں. یہ جو تھوڑا سا شیوکشم دکھائی دے رہا ہے نا, یہ تھوڑے دن کے لیے ہے, سر پہ ایک چوٹ پڑتی ہے اور پوری کی پوری یادداشت سب صاف ہو جاتی ہے. آپ اس بھرم میں مت رہو کہ میں ہی بہت بڑا گیانی ہوں, میرے جیسا کوئی گیانی نہیں ہے, میرے جیسا کوئی ودوان نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ کی بات ہو سکتی ہے یہ. یہاں گیانی شبد کا پریوگ صرف ودوان اور پنڈتوں کے لیے نہیں ہے, آپ بھی گیانی ہیں اپنے فیلڈ کے. آپ جس چیز کا بزنس کرتے ہیں, آپ جس جگہ پر جاب کرتے ہیں, اس میں آپ کو ماسٹری ہے, آپ اپنے فیلڈ کی نالج رکھتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ارے یار اس فیلڈ میں تو میرے جیسا کوئی رنیش بھائی, کمپیوٹر کی نالج جیسی آپ کو ہے ویسی اور کون ہے یہاں جس کے پاس میں آپ کی جیسی نالج ہو؟ سب کا اپنا اپنا فیلڈ ہے, کسی کا کمپیوٹر کا فیلڈ ہوگا, کسی کا انجینئرنگ کا ہوگا, کسی کا کوئی ڈاکٹر ہوں گے, کوئی کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں گے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گے, اکاؤنٹس میں اسپیشلسٹ ہیں, کوئی کس چیز میں ہے. تو جس کا جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اس کو گیان وشیش ہے. اب یدی اس نے اس وشیش گیان کی بہت قیمت کی اور ایسا سمجھا کہ صاحب میرا گیان تو بہت ادبھت ہے, میرے جیسا گیان کسی اور کو نہیں ہے, کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سامنے کسی دوسرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے آپ یدی پرشنسا کر کے دیکھو ارے اس کو کیا آتا ہے ایسا بولتا ہے. کسی ایک سرجن کے سامنے کسی دوسرے سرجن کی پرشنسا کر کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ارے صاحب وہ تو جونیئر ہے میرے سے, کیا اس کو تو پڑھایا ہے میں نے, وہ کیا ہے, ارے وہ تو کچھ نہیں ہے. آپ دیکھو لائن لگتی ہے میرے پاس, تو میں نے دوسرے کی پرشنسا نہیں سہانا. یہ گیانولنی کرم باندھ رہے ہیں, بی الرٹ, ساودھان رہے ہیں آپ اس چیز سے. گیانولنی کرم باندھنے کی طرف تو آپ کا چنتن نہیں چل رہا ہے, آپ کے پریناموں میں کہیں یہ تو نہیں چل رہا ہے کہ انجانے میں ہی آپ گیانولنی کرم باندھ رہے ہیں, اور کیا لگے گا اس سے بتلاؤ کیا ہوگا. خام خام ہی باندھ لیا نا, ہم اس کی کریڈٹ, ہم اس کا بزنس, ہم اس کا کام, ہم اس کو تو کم نہیں کر سکتے. ہم نے اس کی نندا کر لی تو لوگ اس کے پاس میں جانا بند کر دیں گے. ہم ڈاکٹر ہیں مان لیجئے, اور ہم نے کسی دوسرے ڈاکٹر کی پرشنسا نہیں سنی, نہیں سہائی ہمارے کو, ہم نے نندا کی اس کی, تو اس سے کیا ہوگا, اس کے پاس میں پیشنٹ جانا کم ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے گیانولنی کرم کو باندھ لیں گے, اور اس سے ایسا ہوگا کہ آگے جب ہم دوائی کا نام لکھنا چاہیں گے نا, وہ دوائی کا نام ہی یاد نہیں آ رہا کیا تھا وہ. یہ ہوگا. بولو کیا چاہتے ہیں آپ؟ گیانولنی کرم کوئی نہیں چاہتا. ابھی گیانولنی کرم کی یدی اپن بات کریں نا, ابھی جیسے مان لیجیے اپن یہاں سوادھیائے میں بیٹھے ہیں, گیانولنی کرم شبد ہی ہو سکتا ہے کسی نے فرسٹ ٹائم سنا ہو. ہم نے تو سب پتا نہیں کیا گیانولنی, گیانولنی جانے کیا کہہ رہے ہیں, کیا چیز ہے, ہمارے کو کیا سمجھا رہے ہو آپ یہ گیانولنی, ہمیں نہیں سمجھنا. اور اس کو یہ کہو کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی چیز سننے کے بعد میں آپ کو یاد نہیں ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دکان پر بیٹھیں اور کوئی چیز آپ کو سیل کرنی ہے, آپ اس کا کوسٹ پرائز, اس کے سیلنگ پرائز بھول جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا موبائل کہیں رکھ کر کے بھول جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی کی چابی کہیں رکھ کر کے بھول جائیں اور پھر بہت دیر تک تلاشتے رہیں اور ملے ہی نہیں آپ کو؟ آپ یہ چاہتے ہیں کیا؟ ارے نہیں نہیں, کون چاہے گا ایسی باتیں؟ پتا ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب ہوتا ہے جناورنی کرم کے تیور ادے میں. چلو ایسے سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم یدی ابھی جناورنی کرم کی بات کریں تو سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہیں آپ جناورنی کرم سے بچنا چاہتے ہو کیا؟ آتے ہمیں کیا کرنا ہے جناورنی کرم کے بچنے سے؟ ہم کو تو چوروں سے بچاؤ, لٹیروں سے بچاؤ, انکم کیسے بڑھائی جاتی ہے وہ اپائے بتاؤ, وہ بھی بتائیں گے. آپ کو کیوں بڑھانی ہے پہلے وہ پوچھیں گے آپ سے, آپ کیوں بڑھانا چاہتے ہو. تو جناورنی کرم کیا کام کر رہا ہے, اور جناورنی کرم جب تیور ادے میں نہیں ہوتا ہے تب کیسی پرستھتیاں بنتی ہے, آپ کو اس کے بارے میں ایک بار یتھارتھ چنتن کرنا پڑے گا. تو پردوش کے مادھیم سے یہ بتلایا, آپ ساودھان رہیں کس چیز سے؟ کہ دھرماتما کے دوارا کی گئی تتو جان کی پرشنسا یدی آپ کو نہیں سہا رہی ہے تو آپ پردوش نامک دوش لگا رہے ہیں جان میں. ایک دوش ہے ایک پرکار کا جس کے کارن جان کے اوپر آورن آتا ہے, ڈھک جاتا ہے جناورنی کرم. موقع پہ یاد نہیں آئے گی آپ کو بات, جب کوئی پرسنگ ہوگا نا, کئی بار فیل کرتے ہوں گے آپ ایسا, یار یہ چیز تو مجھے بہت اچھے سے یاد تھی, میں اس چیز کو بھول نہیں سکتا, یہ چیز تو مجھے اچھے سے یاد ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں سناؤ تو پتہ نہیں ابھی یاد نہیں آ رہی. بہت اچھے سے کنٹھس چیز جس سمے سنانے کا پرسنگ آئے اس سمے یاد نہیں آئے. بہت ینگ ایج والے جو لوگ ایگزام دیتے ہیں کمپٹیشن ایگزام, یہی تو میں یاد کر کے آیا تھا, یہی یاد کیا تھا میں نے, لیکن کیا تھا بس میرے کو وہ پیج بھی دکھ رہا ہے, بالکل کلیئر دکھ رہا ہے وہ پیج, لیکن بس وہ جو اکشر ہے نا اس پیج کے اوپر لکھے ہوئے وہ تھوڑے دھندلے سے دکھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے آگے, وہ اسمرن میں نہیں آ رہا ہے. جناورنی کرم حاوی ہو رہا ہے, اس لیے یاد نہیں ہو رہا ہے. کیوں باندھا تھا؟ پہلا کارن بتلایا پردوش, دوسرا کارن ننہو تت پردوش ننہو. یہ ننہو کیا چیز ہے؟ جانتے ہوئے بھی کسی کارن سے گیان کو چھپانا, یہ ننہو کہلاتا ہے. ننہو کیا چیز ہے؟ چھپانا, ڈھکنا, اس کو پتا نہیں لگ جائے, اس کو مت بتانا, اس کو معلوم نہیں چل جائے, ایسا سوچنا یہ ننہو کہلاتا ہے. اپنے کو کسی چیز کی نالج ہے نا, اپنے سیکریٹ, بزنس کے سیکریٹ کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے, ہماری جو کلا ہے ہم وہ کسی کو بتلانا نہیں چاہتے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو اپنی جو ٹیکنیک ہے, اپنی جو اسٹائل ہے وہ بتلانا نہیں چاہتے, کیونکہ یدی ہم بتلا دیں گے تو پھر وہ دوسرا بھی سیکھ جائے گا. آپ جناورنی کرم باندھ رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں, آپ جو ویکتی, جو بالک ایسا سوچتا ہے, جو ویکتی ایسا سوچتا ہے کہ میں یدی دوسرے کو سکھا دوں گا تو وہ بھی سیکھ جائے گا, اور ایسا سوچ کر کے بتاتا نہیں ہے, اس کا گیان کے اوپر آورن آ جاتا ہے, جناورنی کرم باندھ لیتا ہے. گیان آورن, پردہ ڈل گیا اس کے اوپر, اب اس کا وہ گیان خود کے ہی کام نہیں آئے گا, ایسی استھتی بن جائے گی. کیا کریں؟ سکھاؤ, سمجھاؤ دوسروں کو, پڑھاؤ دوسروں کو. آپ جو جو دوسروں کو سکھائیں گے, جو جو دوسرے کو بتائیں گے, آپ کے جناورنی کرم کا شیوکشم اپنے آپ کھلتا چلا جائے گا. میں اسمرن شکتی کے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں, کیسے بڑھ سکتی ہے, کیوں گھٹی تھی آپ کی اسمرن شکتی؟ ویراجنا کی وجہ سے. دو ہیتو بتلا دیے یہاں, پہلی چیز تتو گیان اور تتو گیانیوں کی پرشنسا نہیں سہانا, گیانیوں کی پرشنسا نہیں سہانا, انجینئر کو دوسرے انجینئر کی پرشنسا نہیں سہا رہی ہے, یہ پرشنسا نہیں سہا رہی. کس کی؟ اس کے گیان کی, اس کی نالج کی, وہ پرشنسا آپ کو نہیں سہا رہی ہے. آپ نے جناورنی کرم باندھ لیا, ننہو جانتے ہوئے بھی گیان کو چھپا لیا. جوان تک آ گئی تھی بات, میں بتانے والا تھا, لگی یار بتاتے ہو ان کو مت بتاؤ, آپ نے چھپا لیا اس بات کو, گیان کو چھپایا نا, دوسرے کے سامنے پرکٹ نہیں ہونے دیا نا. جناورنی کرم आपके ज्ञान को अंदर ही प्रकट नहीं होने देगा, उसको ही ढक देगा। मिनहव तीसरी बात कही है मात्सर्य। मात्सर्य माने होता है घमंड, ज्ञान का घमंड। मद हो जाता है ज्ञान का, कैसा अभिमान हो जाता है, कैसा घमंड हो जाता है, मैंने दूसरे को बतलाया और ये मेरे से आगे निकल जाएगा, बताना ही नहीं इसको, ऐसा मात्सर्य। शास्त्र ज्ञान होने पर दूसरे को इसलिए नहीं बतावे कि वो भी जान लेगा, वो भी सीख लेगा। अपनी नॉलेज दूसरे को नहीं देना, ये मात्सर्य के कारण होता है। इससे भी ज्ञानावरणी कर्म बन रहा है। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों की कॉमन बातें कही है यहाँ। दोनों से एक समान कर्म का बंधन होता है और दोनों के एक समान कारण कहे गए हैं। जानने में यदि ये सब हो तो ज्ञानावरणी, और देखने में अवलोकन में यदि हो तो दर्शनावरणी। इसलिए कॉमन है ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण। मात्सर्य माने क्या कहा, घमंड की बात कही। लेकिन आप कितना भी घमंड करो अपने ज्ञान का, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, लेकिन शेर को सवा शेर दुनिया में मिल ही जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ये सोचे कि मेरे बराबर, अरे भाई साहब आप जो हो ना इससे बढ़कर नॉलेज वाला कोई दूसरा होगा। कोई कहे साहब मेरे से अच्छा इस चीज का नॉलेज जानकार कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई दूसरा मिलेगा। कोई कहे साहब मेरे से अच्छा कोई चेस नहीं खेलता, इससे अच्छा कोई खेलने वाला मिलेगा। तो विश्वनाथ आनंद कहेगी मेरे से अच्छा कोई पूरे विश्व के अंदर चेस खेलने वाला नहीं है, शतरंज के अंदर मेरे से अच्छा कोई खेलने वाला नहीं है, कि दूसरा आएगा। शेर को सवा शेर मिलता है, ऐसा ही स्वरूप है। तीन खंड के अधिपति भी हार जाते हैं, प्रति नारायणों को नारायण हरा देते हैं। नारायणों की नहीं चलती है, कब तक चलेगी, उदय बदलते देर नहीं लगती। जब तक उदय अपने अनुकूल है तब तक आपकी प्रशंसा हो रही है, और उदय बदल गया और समझ लो आपके ऊपर कोई दूसरा हावी हो गया, बदल जाता है ऐसा उदय। मुझे प्रसंग याद आता है राजा भोज का। राजा भोज के दरबार में कुछ ज्ञानी लोग रहते थे, कुछ कवि रहते थे, और राजा भोज को इस प्रकार के बहुत शौक था कविताएं सुनने का, नई नई कविताएं सुनने का बहुत शौक था उसको। और उसने ऐसा ऐलान कर दिया कि हमारे को नई कविताएं सुनाओ, हम आपको पुरस्कार देंगे। अब लेकिन रोज रोज नई नई कविताएं सुनाने के लिए आए लोग और वो उनको पुरस्कार देवे तो खजाना खाली हो जाए, क्या करें। तो उसके सभा में एक पाठी, दो पाठी और तीन पाठी लोग बैठते थे। ये क्या होता है, एक पाठी माने एक बार सुनते ही जिसको याद हो जाए, दो पाठी माने जिसको दो बार कान में कोई बात सुनी और याद हो जाए, और तीन पाठी माने जिसने तीन बार कोई बात सुन ली उसको कंठस्थ हो जाए। तो उसने उनकी सहायता से ऐसा ऐलान किया अपने पूरे राज्य में कि जो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल नई कविता जो कभी नहीं सुनी हो, और हमारे सभा में बैठे हुए जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कभी नहीं सुनी हो, ऐसी कोई कविता नई बना करके लेकर के आए तो हम उसके लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा करते हैं। शर्त क्या है, बिल्कुल नई होनी चाहिए जो कभी किसी ने नहीं सुनी हो। लोग आते थे, नई नई बहुत सुंदर अच्छी प्रशंसा भरी कविताएं लिख करके लाते थे। जब सुनाते थे तो राजा भोज पूछते थे क्यों भैया तुम सुना सकते हो, तुम्हें पता है। वो तुरंत सुना देता था एक पार्टी, कैसी बात करते हो, देखो इनको आती है, इन्होंने सुना दी कि भैया तुम सुना सकते हो। अब उसने दो बार सुन ली, क्या उसने भी सुना दी भैया तुम्हें पता है, तो उसने भी सुना दी। तो क्या नई कविता लेकर के आए हो, हमारे सभा में बैठे हुए तो सबको पता है, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। रोजाना नई नई कविताएं सुनता था, अपना शौक पूरा होता था और जेब से एक पैसा नहीं लगता था। क्या महीनों गुजर गए, لوگ آتے تھے پریشان بھی تھے بہت, کبھی اتنے پریشان تھے کہ کیا کریں گے, ہوتا کیسے, ہم تو ابھی بنا کر کے لے کر کے گئے تھے, وہ کیسے وہ پرانی بتلاتے ہیں اس چیز کو, اور کیسے ان کے پاس میں پہلے سے وہ رچنا ہے اور ان کی یاد کی ہوئی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک مل گیا ایسا ہی ہوشیار, اور اس نے آ کر کے ایسی کویتا بنا کر کے پرستت کی جس میں یہ لکھا تھا, اس کویتا کے ارتھ میں پورا ورنن لکھا تھا کہ ہے راجن, آپ کے پتا جی نے ایسے ایسے پرسنگ میں میرے پتا جی سے 100,000 سورن مدرائیں اس طرح سے ادھار لی تھی, اور میرے پتا جی نے سہایتا کی تھی, اور آپ یہ سورن مدرائیں مجھے واپس پردان کیجیے. اور جب یہ کویتا لا کر کے اس نے سنائی تو راجن سے کہی, کیوں راجن آپ کو پتا ہے اس بات کا, آپ نے سنا ہے یہ, آپ کو پتا ہے؟ سنے کا کیوں سنو, اس نے سنا دی کہ ہاں مہاراج یہ بات تو کیا. دوسرے سے پوچھا تو اس نے بھی سنا دیا, تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی سنا دیا. تو راجن نے کہا کہ تمہاری یہ بات تو بہت پرانی ہے, یہ کویتا نئی نہیں ہے, یہ تو بہت پرانی ہے. تو مہاراج میں کوئی نئی نہیں سنا رہا ہوں, میں تو پرانی ہی سنا رہا ہوں, میں تو 100,000 سورن مدرائیں لینے کے لیے آیا ہوں, یہ گواہ ہے آپ کی سبھا میں بیٹھے ہوئے. یدی آپ یہ کہتے ہو کہ یہ بالکل نئی رچنا ہے تو 50,000 سورن مدرائیں, اور یدی آپ یہ کہتے ہو کہ یہ پرانی ہے تو 100,000 سورن مدرائیں آپ کو دینی ہوگی. کوئی ویکتی کتنا بھی ہوشیار بننے کی کوشش کیوں نہ کرے, لیکن اس سے بڑھ کر ہوشیار دنیا میں کوئی نہ کوئی اوشیہ ملی جاتا ہے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, آپ دھوکے میں ہیں. یہاں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, سب ایک سے بڑھ کر, کوئی کہے میرے جیسا کوئی دوسرا سندر نہیں ہے, میرے جیسا کوئی دوسرا جانوان نہیں ہے, میرے جیسا کوئی دوسرا بدھیمان نہیں ہے. آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, سوئم سوئم کی پرشنسا کرتا رہتا ہے, سوئم سوئم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, دوسرے کو تو پرواہ نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے, بالکل پریکٹیکل انوبھو کی چیز ہے, کوئی ویکتی آپ کی پرشنسا کرتا ہے اور آپ کو ابھیمان ہو جاتا ہے. مان کرن کو کون ٹھکانا, جان کا شیوکشم تھوڑا سا بڑھ گیا, کسی نے آپ کی پرشنسا کر دی, آپ ہو سکتا ہے زندگی بھر یاد رکھو. کسی کو ہم نے کہا ارے آپ کے تو آپ تو بالکل ایسے لگتے ہیں امیتابھ بچن جیسے, اب وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اس بات کو. ارے پنڈت جی آپ نے اس دن سبھا میں میرے کو کہا تھا امیتابھ بچن, 20 سال بعد میں بھی اس بات کو یاد رکھے گا, اس ابھیمان کو اپنے ماتھے پر لے کر کے گھوم رہا ہے. اور پنڈت جی نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا کون سا امیتابھ بچن اور کیا. میں نے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیاناورنی کرم ہے, یہ گیاناورنی کرم کیوں بند رہا ہے کہ آپ نے گیان کا ابھیمان کیا. یہ گیاناورنی کرم آپ کے اس ابھیمان کو جب ادے میں آئے گا نا گیاناورنی کرم, تو پورے کے پورے گیان کو ایسا ہین کر دے گا کہ نہ آپ دیکھنے کے یوگیہ رہیں گے نہ آپ سننے کے یوگیہ رہیں گے. رسنا اندری نہیں ہوگی, جوان نہیں ہوگی, ایک اندری میں چلا جائے گا, اکشر کے انت میں بھاگ گیان ہو جائے گا. یہ گیان کے ابھیمان گیانیوں کی ویرادھنا کا پھل ہے, یہ گیان کی ویرادھنا کا پھل, گائک کی ویرادھنا کا پھل, ایک اندری میں چلا جاتا ہے, جڑ ہو جاتا ہے. تین کارن بتلائے ابھی تک, پردوش, ننہو اور ماتریہ, چوتھا کہا انترائے, بادھا ڈال دینا, کوئی پڑھ رہا ہے لائٹ بند کر دینا, کوئی پڑھنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے اس کے سی ڈی پلیئر میں سے وائر ڈسٹرب کر دینا, ٹھیک ہے. کوئی بچپن میں ہوتا ہے ایسا, بچوں میں بہت اس طرح کے کرتا خرافات جو ہے وہ سوجتی رہتی ہے, تو یہ میرے سے آگے نہیں نکل جائے, اس کو یاد نہیں ہو جائے, یہ تیار نہیں کر لے ہوئے, اس کی کاپی کے پیج بدل دیے, کسی کا کچھ کر دیا, کسی کا کچھ کر دیا, انتر آئے اور بادھا ڈال دینا, یہ پڑھ نہیں پائے. یا پھر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, مندر جانا چاہتا ہے, ہم نے اس کو روک لیا. کوئی گیان پراپت, کوئی پروچن سننے کے لیے جانا, ارے یار کیا جاتے ہو, بیٹھو یہی تھوڑی دیر, اس کا ٹائم ویسٹ کر دیا ہم نے, وہ نہیں سن پائے. یہ سب انترائے, انترائے کرم سے بھی ہم گیاناورنی کرم باندھ رہے ہیں. انترائے ایک انڈیویجل کرم ہے, وہ الگ ہے, उसकी चर्चा अपन फिर करेंगे आगे। अभी यहाँ कौन से कर्म की बात कर रहे हैं हम? ज्ञानावरणी कर्म की, माने ज्ञान में बाधा डाल देना। अंतर आय, अंतर माने गैप, हमने गैप डाल दिया उस व्यक्ति और ज्ञान, इन दोनों में हमने बाधा डाल दी, बाधक कारण बन गए, तो ये अंतराय। तो किसी के ज्ञान अभ्यास में विघ्न डालना वो अंतराय है। आसादन, इसके बाद एक कारण बतलाया, आसादन। आसादन माने दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना, वो आसादन, ढकना। और एक कहा उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, वो उपघात। ये मूल सूत्र दिया, तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। इससे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रव होता है। अब बोलो, आप ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म बांधना चाहते हैं क्या कि नहीं चाहते? तो फिर ज्ञानावरणी कर्म बंधा क्यों था? ये कारण बतलाए ना अभी, इनसे ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, क्या क्या कारण बतलाए थे? यही तो थे, इसी प्रकार के, तो कि पढ़ने वाले को पढ़ने नहीं दिया, उसको हमने याद नहीं करने दिया, उसके पढ़ने में बाधक बन गए, ज्ञानियों की प्रशंसा नहीं सुहाई, ज्ञानियों की हमने विराधना करी, इसके कारण ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। और उसका फल क्या मिल रहा था ज्ञानावरणी का? कि आपकी खुद की बुद्धि बंद हो गई, दूसरों की बुद्धि का विकास नहीं होने दिया, उससे ऐसा कर्म बंधा कि हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। ज्ञान और ज्ञानियों की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। अब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम कैसे खुले, स्मरण शक्ति कैसे बढ़े, याददाश्त शक्ति कैसे बढ़े, कि ज्ञान की विराधना से बंधा था ना, ज्ञान की आराधना करो, इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम खुलेगा। विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था। देखो, जिनवाणी की विराधना की हमने, शास्त्र को रख दिया, हम छोटे छोटे से बच्चों को ऐसा उपदेश देते हैं, सिखाते हैं, नहीं बेटा जमीन पे नहीं रखते, किताबों की विनय करो, पुस्तक को संभाल करके रखो, बुक्स को फटने नहीं दो, जूते हाथ नहीं लगाओ बुक्स के, ये विराधना है। हमने जिनवाणी की विराधना करी। जैसे मान लीजिए कल अपन संडे है ना, कल पूजन होगी ना, यहाँ पूजन का दिन है अपने यहाँ मंदिर में, तो क्या होता है, पूजन की हमने चावल चढ़ाए इधर से उधर, और कुछ चावल बुक के बीच में रह गए, हमने उसको बंद करके रख दिया, तो क्या होगा? अब 7 दिन बाद में खुलेगा, तब तक उसमें चावलों में जीव पड़ जाएंगे, किताब के पेज गल जाएंगे, हैं, पेज फटना फाड़ना, इन सबसे ज्ञानावरणी कर्म बनता है। तो क्या सावधानी रखना अपने को कि नहीं, पूजन करने के बाद में हमने बिल्कुल किताब को लिया और उसके पेज हिला दिए हमने, उसमें सारे चावल वगैरह यदि कोई हो तो सब निकल जाए, पुस्तकों को व्यवस्थित जगह पर रखना, संभाल करके रखना, उनकी विनय करना, जनवाणी की विनय करना, उसके हाथ जोड़ना, उसको याद करना सबसे बड़ी विनय है। आप स्तुति याद कीजिए, आप पाठ याद कीजिए, आप भक्तामर स्तोत्र याद कीजिए, आप एक ही भाव स्तोत्र याद कीजिए, आप श्रीमद जी के पद्य याद कीजिए, तो क्या होगा, उससे अपने आप ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम खुलेगा। ज्ञान की विराधना से स्मरण शक्ति मंद पड़ी थी, ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म तीव्र हुआ था, याददाश्त शक्ति चली गई थी, याद किया हुआ भूल गया था, और ज्ञान की आराधना से ज्ञान का क्षयोक्षम खुलता है अपने आप। आप याद करना शुरू कीजिए, मैं कहता हूँ आपको शुरू शुरू में तकलीफ होगी, उसके बाद में आपकी स्मरण शक्ति इतनी हो जाएगी कि आप 2 बार कोई छंद बोलेंगे और आपको वो छंद याद हो गया। आप देखिए ये चमत्कार, आप करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल कहता हूँ, क्योंकि हम तो पता है ना, असली कारण का पता है, इसलिए हम ये बात बतला रहे हैं आपको। हमारे को वास्तविक कारण का पता होगा, आप याद कीजिए, पद्य याद कीजिए, मजा आएगा आपको। हम मंगलाचरण बोलते हैं, स्तुतियां बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ बोलते हैं, मेरी भावना बोलते हैं, 12 भावना बोलते हैं, कोई पाठ वगैरह यदि आप बोलते हैं, लेकिन देखिए सिर्फ तोता रटन जैसा नहीं, थोड़ा सा यदि आपने उसके प्रति भाव पूर्वक उसके साथ में जुड़ान किया तो आपके ज्ञान का क्षयोक्षम खुल जाएगा। कोई व्यक्ति ये कहे साहब ये तो ज्ञानियों की बात है, हमें क्या करना है ज्ञान का, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं कि नहीं। ज्ञान ऐसी जबरदस्त चीज है, ज्ञान ऐसी कला है, जिसके पास में वो कला होती है वो हर जगह पर उसको समाधान मिलता है, हर जगह पर उसको सुविधा मिलती है। अद्भुत कला है। आपने अकबर बीरबल के किस्से तो बहुत सुने होंगे। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध है? ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, कला के लिए प्रसिद्ध है। हर चीज का समाधान है उसके पास में, हर समस्या का समाधान। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समस्या बीरबल के पास में लेकर के जाओ और समस्या का समाधान बीरबल न कर सके। हर समस्या का समाधान मिलता है। ज्ञान ऐसी चीज है, कला है ये। ज्ञान कला जिनके घट जागी, तेजग माही सहज वैरागी। जिनके हृदय में ज्ञान की कला जागृत होती है, भेद ज्ञान की कला जिनके पास में आ गई है, निज को निज और पर को पर जानने की कला जिन्होंने सीख ली है, वो असली ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान है। अब संसार से पार होने की कला आ गई है उसके पास में। हम लौकिक ज्ञान की बात नहीं करते, हम बाह्य क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं करते, हम तो भेद विज्ञान की बात करते हैं, हम तो वास्तविक कला की बात करते हैं। वो कला सीख लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर भर लो। बाकी ज्ञान का क्या करना है? प्रयोजन भूत ज्ञान, जिससे अपना प्रयोजन सदता था, वो है ना प्रसंग। एक कोई विदेशी व्यक्ति एक नाव में बैठ करके जा रहा था और रास्ते में जाते जाते उसने नाविक से पूछा कि क्यों भैया कुछ कहां तक पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबू जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। तो मुझे हिसाब किताब जानते हो? कि नहीं, ये तो हमारे को नहीं आता है। तो कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है तुम्हारे को? कि हमें तो कछु भाषा नहीं आवे। वो तो गांव का आदमी, तो कुछ नहीं आता था उसको। तो क्या जानते हो? कि कुछ नहीं जानते, हम तो बस ये नाव चलाना जानते हैं, नदी में इसी में हमारी तो जिंदगी इसी में गई है, और तो हमने कछु किया नहीं, और तो कुछ आता नहीं हमारे को। कि तुमने तो अपनी आधी जिंदगी पानी में गवा दी है। क्या किया तुमने तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं किया, पानी पानी में तुम्हारी सारी जिंदगी निकल गई। अपनी कितनी जिंदगी, जितनी निकल गई है सब पानी में गवा दी तुमने। और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ पता है ना आप लोगों को? नाव में थोड़ा सा झटका लगा और नाव डगमगाने लगी। तो नाविक ने पूछा कि बाबू जी, आपको तैरना आता है? कि नहीं, नहीं आता। कि हमारी तो आधी गई थी, आपकी तो पूरी गई पानी में। और कुछ आए या नहीं आए, लेकिन तैरने की कला हमारे को आती है तो हम पार हो सकते हैं। क्या वो कला आती है या नहीं आपको? ये ज्ञान कला ऐसी है, जो कला तैरने की कला है, जो पार होने की कला है। ये कला यदि आपके पास में है, आप भव से पार हो सकते हैं, आप संसार से पार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। आपको पता है तेनालीराम बहुत अच्छे विद्वान थे। राजा के दरबार में जैसी ख्याति जैसी प्रसिद्धि बीरबल की है, उसी तरह के प्रसिद्ध विद्वान थे, मंत्री थे राजा के, और हर समस्या का समाधान कर दिया करते थे। लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी योग्यता, उनके ज्ञान का क्षयोपशम, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जलते हैं। ये सहज है ऐसा। पता नहीं क्यों मनुष्य गति के जीवों में ऐसी ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे से जलते रहते हैं। तो उससे भी लोग जो दूसरे मंत्री थे उनको उसकी प्रशंसा सुहाती नहीं थी। राजा का प्रिय था, चहेता था, समस्याओं के समाधान करता था। दूसरे मंत्रियों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी, दूसरे मंत्रियों को ये बात सुहाती नहीं थी। तो जैसे जैसे करके सोचते रहते थे कि राजा के सामने इसकी निंदा की जाए। लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता, हम उसकी निंदा करना चाहते और उसकी प्रशंसा में बदल जाती बात। ऐसा होता रहता था, कई बार होता रहता था ऐसा। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा के खिलाफ। ऐसा कुछ दिमाग में आया कि कोई ऐसा षड्यंत्र रच दिया, ऐसा इसको फंसा दिया जाए। اور راجہ کے سامنے جا کر کے اس کی شکایت کی, اور اس حد تک اس بات کو پرستوت کیا کہ راجہ مجبور ہو گیا اسے مرتیو دنڈ دینے کے لیے, مجبور ہو گیا. کیا کرے اب, سنگین اپرادھ جرم کیا ہے, اپرادھ ہو گیا اس سے. راجہ نے بلایا اس کو اور سزا کی گھوشنا کر دی کہ مہاراج, دوسرے منتریوں نے کہا مہاراج ایسی سزا ملنی چاہیے اس کو کہ دوسرا ویکتی کبھی ایسا اپرادھ کرنے کی ضرورت نہ کرے, ایسی سزا ملنی چاہیے, مرتیو دنڈ ملنا چاہیے مہاراج, دوسرے منتری نے کہا. ایک منتری نے کہا کہ مہاراج بلا کر کے ابھی سزا دو, تب ہم جانیں گے کہ آپ کا نیائے بہت برابر ہے. راجا بھی کیا کرے, پھنس گیا تھا بےچارا, سب طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اس طرح کی, منتری لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بلایا اس نے تینالی رام کو سبھا میں, تینالی رام سبھا میں اپستھت ہوئے کہ تینالی رام تم نے اس طرح کا اپرادھ کیا ہے اور اس اپرادھ کے لیے ہم تمہارے کو مرتیو دنڈ کی گھوشنا کرتے ہیں, شام کو تمہارے کو مرتیو دنڈ دیا جائے گا مہاراج. لیکن ایک چیز تمہارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جیون بھر ہمارا بہت اپکار کیا ہے, ہمیں تکلیف تو بہت ہے یہ کہتے ہوئے, یہ مرتیو دنڈ سناتے ہوئے ہمارے کو ویدنا تو بہت ہو رہی ہے, تکلیف تو بہت ہو رہی ہے, کیونکہ تم ہمارے بیچ میں نہیں رہو گے, جیون میں تمہارے بہت اپکار رہے ہیں ہمارے اوپر, تمہارے کو مرتیو دنڈ تو دینا چاہتے ہیں, لیکن کیسی مرتیو تم پسند کرو گے, کس سے تلوار سے کٹنے میں, جس میں تمہارے کو تکلیف کم ہو, جیسا تم چاہو, تلوار سے کٹ کے مرنا چاہو تو ہم تمہیں تلوار سے کاٹ دیں, تم یدی سولی پر چڑھنا چاہو تو ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں, تم یدی یہ چاہو کہ تمہارے کو پروت سے نیچے پھینک دیا جائے ایسا کر لے دیں, تم یدی یہ چاہو کہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو پھانسی پہ لٹکا دے دیں, تم یدی زہر کھا کر کے مرنا چاہو تو تمہارے کو زہر دے دیں, جیسی مرتیو تم چاہو ہم تمہاری اچھا انوسار مرتیو دنڈ دینے کی گھوشنا کرتے ہیں, شام کو تمہارے کو مرتیو دنڈ دیا جائے گا. سب منتریوں کے چہرے کھلے ہوئے تھے, اب تو اور مزہ آئے گا, آخر کیسی موت چنے گا. دربار لگا تھا شام کو, سب لوگ اپستھت تھے, منتری لوگ کھڑے تھے, اور سامنے تینالی رام ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور راجا نے نویدن کیا تینالی رام سے کہ کیوں بھیا, سوچ کر کے آئے کیا, وچار کے آئے تم, کون سی موت مرنا پسند کرو گے؟ مہاراج میں جیسی موت مرنا چاہوں گا, کیا آپ مجھے اس موت مرنے کی آگیا پردان کریں گے؟ کیا بات کرتے ہو, جوان دیے ہم نے, تم بولو تم کیسی موت مرنا چاہتے ہو. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے نویدن کیا, مہاراج میں تو بڑھاپے کی موت مرنا چاہتا ہوں. بولو کیا کر سکتا تھا راجا, راجا تو وچن دے چکا تھا, کیا بڑھاپے کی موت مرنا چاہتا ہوں مانے ابھی مرتیو دنڈ سے مکت ہونا چاہتا ہوں, مکت ہو گیا. ارے جس کے پاس میں گیان ہوتا ہے, سب طرف سے جہاں موت دکھائی دے رہی ہو, ہر کوئی ویکتی یہ کہہ رہا ہو کہ اب تو اس کی موت نشچت ہے, ایسے پرسنگ میں بھی گیان اس کو نکال کر کے باہر لے جا سکتا, گیان کی کلا ایسی ہے, گیان کی سامرتھ ایسی ہے جو آپ کو بچا کر کے باہر کر دے گا, آپ کو وہاں سے نکال کر کے باہر لے جائے گا, ایسی کلا ہوتی ہے گیان میں. یہ گیان ادبھت چمتکارک شکتی ہے, آپ کو گیان کی ردھیوں کا پتہ نہیں ہے, یہ گیان کی کیسی ردھی ہے. جس کے پاس میں گیان کلا ہوتی ہے اس کے ساتھ میں سچا سکھ پراپت ہوتا ہے, کیونکہ گیان اور سکھ کا اوینا بھاؤ سمبندھ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یدی آپ سچا سکھ پراپت کرنا چاہتے ہو تو آپ سمیہ گیان پراپت کرنے کا پریاس کرو, گیان کلا پراپت کرنے کا پریاس کرو, بھید وگیان کرنے کا پریاس کرو, بھید وگیان کا ابھیاس کرو, دیہ اور آتما کے پرتھک پرتھک پنے کا ابھیاس کرو, کیونکہ یدی یہ گیان ہوگا, اس گیان کا یدی وکاس ہوگا, یہ کھیوکشم یدی آپ کے پاس میں ہوگا, یہ کلا اور یہ یوگیتا یدی آپ کے پاس میں ہوگی, آپ الپ کال میں سنسار سے پار ہو جائیں گے. اور گیان ورنی کرم یدی تیور ہوگا تو کھیوکشم مند پڑا ہوگا, پتھر پاشان میں جا کر کے جنم لے لے گا, ایک اندری بن جائے گا, گیان اتنا ہین ہو جائے گا کہ میں کون ہوں یہ جاننے سوچنے سمجھنے وچار کرنے کی سامرتھ نہیں رہے گی. آپ کیا چاہتے ہیں, جڑ بننا چاہتے, جڑ تو نہیں بنتا ہے, ये जीव कभी जड़ तो नहीं हो सकता है, लेकिन जड़ सरीखा हो जाता है, जड़वत हो जाता है, ज्ञान इतना मंद पड़ जाता है। भव विकट वन में कर्म गैरी, ज्ञान धन में रो हरियो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिरो। क्या चाहते हैं आप? अनिष्ट गतियों की प्राप्ति, हीन अवस्थाओं की प्राप्ति। असंगी पंचेंद्री तक के जीवों में तो समझ नहीं है बेचारों में। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, कीट पतंगा हो जाते हैं, वनस्पति का एक हो जाते हैं। कितनी वनस्पति दिखाई देती है आपको, एक इंद्री झाड़ खड़े हैं क्या, और उन्हीं उनके अंदर मोहित होते हैं। हमारे को अच्छा लगता है, अरे कितना सुंदरता है, कितनी सुंदरता है, पानी पेड़ पहाड़ श्रेणी में सौंदर्य दिखाई देता है हमारे को। सब एक इंद्रिय हैं, ज्ञान की हीनता है, ज्ञान मंद पड़ गया है, समझ नहीं रही है। ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय के कारण तो समझिए, संभालिए अपने आप को। यदि आप अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, ज्ञानावरणी कर्म के बंधन के जो कारण कहे गए हैं उनसे बचने का प्रयास करेंगे तो क्षयोक्षम भी खुलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्षयोक्षम बढ़ाने के चक्कर में नहीं लगना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, अंतिम बात, क्षयोक्षम बढ़ाने के चक्कर में नहीं उलझना। तो क्या करना है? जितना है वो पर्याप्त है, उसकी निर्मलता चाहिए। हमें ज्ञान का विकास नहीं चाहिए रुकन भाई, हमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए, हमें ज्ञान की पवित्रता चाहिए। जितना है वो पर्याप्त है, उसकी दिशा सही चाहिए। हमें यदि हमारे ज्ञान को सही दिशा में लगाना है, यदि हमने हमारे ज्ञान को सही दिशा में लगा दिया तो अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। ये ज्ञान समाधान कारक है, ये ज्ञान मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस ज्ञान की वजह से हम मुक्त हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, परमानेंट सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए उस परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए ज्ञानावरणी कर्म के जो कारण बतलाए हैं बंधन के, उनसे बचिए, उनसे छूटिए, स्वाध्याय कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, अभ्यास कीजिए, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये जानने का प्रयास कीजिए। और इन सब के माध्यम से हम सभी आत्म कल्याण करते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति करें, परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को
आम्यो दुख अनंत